نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amazed by الأسماء الحسنى. آج ہم اس سیریز میں سے بہت ہی خوبصورت نام الرقیب کو دیکھیں گے. اردو لینگویج کے ناطے سے یہ لفظ بھی ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ معروف نہیں ہے، اور اگر ہے بھی پوئٹری میں اور فلموں میں اور گانوں میں یا کوئی ایسی بڑی شستہ اردو میں، تو رقیب کہتے ہیں رقابت رکھنے والا، اور رقابت جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور کسی کے ساتھ کوئی نیگیٹو تعلق، یعنی آگے جانے نہیں دینا، پیچھے رک نہیں سکتے، کریں کیا. فلاں رقیب ہے جس کو آپ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ویلن کا ایک کردار جو ہمارے ہاں فلموں میں ہوتا ہے، بڑی شستہ اردو میں اس کو رقیب کہتے ہیں. یہ ہماری اردو کی کم فہمی بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اردو تھوڑی بہت سیکھی بھی تو وہ فلموں سے سیکھی، باقی تو ہمارے اور بڑے سکھانے والے ہیں. تو آج دیکھیں گے کیا رقیب کون ہے. بڑا نگہبان، محسوس کیجیے. رقبہ کہتے ہیں گردن کو، کہتے ہیں نا فک رقبہ، جو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ترجمے کو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو رقبہ گردن، انق بھی گردن ہوتی ہے، رقبہ ہوتا ہے گردن چھڑانا. تو رقیب فعیل، پھر وہی فعیل کا وزن، کریم، رقیب، مستقل، کنٹینیو، نو گیپ، کوئی رات کا فرق نہیں، کوئی دن کا نہیں، کوئی 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ وہ نہ ہو، بلکہ الرقیب وہ جس کی نظر بندے کی گردن پہ ہو. گردن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کسی کا ہاتھ کاٹ دو تو وہ نہیں مرتا؟ اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں کاٹ دو، زبان کاٹ دو، نہیں مرتا. یہ گردن کیوں کاٹی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جسم کی بڑی بڑی اہم رگیں گردن سے گزرتی ہیں، دل سے لے کر دماغ سے لے کر پھپھڑوں کی، معدے کی، یعنی جو باڈی کے رئیس ارکان ہیں نا، وہ سب گردن سے گزرتے ہیں. سورہ قاف کی آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں تو انسان کی رگے گردن کے بھی قریب ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی رگے گردن کے بھی قریب ہوتا ہے نا، تو اس کو رقیب کہتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دکھ میں، خوشی میں، اکیلے میں، دوسروں میں، تنہائی میں، شہنائی میں، تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا دل دکھا ہوا اس وقت، تم خوش ہو اس وقت، تم اداس ہو اس وقت، تم میں رونا آ رہا ہے، تمہارے دل پہ بوجھ ہے، تمہارا خامخواہ خوش ہونے کو دل کر رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تمہاری حبل ورید، یعنی وہ رگ جس کو کاٹ دیں تو انسان مر جائے، مراد ہے کہ بالکل تمہارے قریب ہوں. دوسروں کو تو بلانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، اللہ تو قریب ہے ہمارے. بالکل جو لفظ القریب ہے نا، اس سے ملتا ہوا لفظ ہے الرقیب، لیکن فرق ہے. قربت میں کئی قسم تھی، مدد بھی تھی، معاونت بھی تھی، لیکن رقیب کے اندر خاص طور پہ نگرانی. تو جب لفظ رقیب آئے گا تو رقبہ کو ذہن میں لے لیجئے گا، اور رقبہ لفظ یا رقیب لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا نگہبان. اب مثال تو نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، جیسے آپ سیکیورٹی مین رکھ لیتے ہیں، گارڈ، پولیس مین، انسپیکٹر، فوج کو بلا لیا، کیا ہوگی ان کی سیکیورٹی؟ لیکن جب رقیب آپ کے ساتھ ہے تو پھر وہ آپ کو دشمنوں کے نرغے سے بھی نکال کے لے جاتا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات نکال کر لے گئے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا. اور وجالنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا، آگے پیچھے دیواریں کھینچ دی، ان کو پتہ ہی نہ چلا اور آپ نکل گئے. اور پھر رقیب نے کیسی نگہدانی کی کہ اس ہما فی الغار، جب وہ دونوں ہی غار میں تھے، کون؟ ابو بکر صدیق اور صدیق کا دوست، اور صدیق جس کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس نے غار میں اس طریقے سے نگہبانی کی اپنے دو بندوں کی کہ اگر دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو ان کو نیچے سے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جاتے. اور رقیب وہ ہے کہ جس نے غار کے منہ پہ جالا کروا دیا، اور رقیب وہ جس نے کبوتری سے انڈے دلوا دیے، اور رقیب وہ ہے کہ جس نے اصحاب غار کے کتے کو باہر بٹھا کر ایک ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی اس غار کی طرف آنے کی جرت نہ کرے. یہ اس کی نگہبانی ہے. اور رقیب وہ ہے کہ جو گرتے گرتے بچے کو ایسے تھام لیتا ہے کہ ماں شاید بے ہوش ہو جائے اس صدمے کو دیکھے کہ میرا بچہ چلا گیا، لیکن رقیب ہاتھ دے کر بچا لیتا. کئی دفعہ پہاڑ کی چوٹیوں سے گرتے بچے بچ گئے. ابھی چند ماہ پہلے ایک پلین کریش ہوا، शायद मलेशिया का था या इंडोनेशिया का, तो उसके बारे में भी यही बात पता चली कि एक बच्चे को माँ ने किसी बेल्ट में, वही जो होती हैं सिक्योरिटी बेल्ट, उसमें डालकर ऊपर से फेंक दिया कि चलो जहाज में जलने से बच जाएगा, और वो बच्चा समंदर या दरिया की मौजों से बच के वापस आ गया। तो बड़ा निगेबान है। और लिखिए, और कौन है निगेबान के जिसने मासूम बेबी मूसा को दरिया में डूबने नहीं दिया, जिसने मूसा की माँ के दिल को फारिग़ा कर दिया। सूरह कसस में आप पढ़ लें, बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा कि जब मूसा की माँ का दिल गम से फारिग हुआ पड़ा था, यानी और कुछ नहीं था उसके दिल में सिवाय मूसा, मूसा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और उस वक्त अल्लाह ने उस माँ से कहा, गम क्यों करती है, हम लाएंगे उसको तेरी तरफ, इन्ना रादू हुई लेगी, हम उसको नबी बनाएंगे, तेरे पास वापस आएगा। गया तो वो एक मासूम बच्चा बन के था, लेकिन जब आएगा तो उसके साथ फिरौन की सारी फौज और उसकी चीजें भी होंगी, तू क्यों गम करती है। और फिर लिखिए, रकीब वो है कि जिसने मछली के पेट के अंदर से ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ने पे यूनस अलैहिस्सलाम की इस पुकार को सुनकर उनको मछली के पेट से ऐसे निकाला कि न दांत लगा और न यूनस के पेट को गलने दिया, न जिस्म को पानी में गिलाया, ना मछली के पेट के अंधेरे। ये कोई छोटी बातें हैं? आप क्या कहते हैं रकीब कौन है? हकीकत ये है कि अल्लाह की ज़ात रकीब, और इसी से फिर शहीद भी है, ये दोनों नाम अक्सर इकट्ठे भी आते हैं, यानी वो जो हर वक्त आप पे, फिर इसको निगरान के जहन में रखिए, मुहाफिज, पासबान। क्या आप इंश्योरेंसेस लेकर अपनी सिक्योरिटी करते हैं, और क्या आप गार्डमैन रखते हैं, और आप क्या CCTVs लगा लेते हैं, और आप क्या कोई गैजेट्स इस्तेमाल करके अपने घरों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी की बातें करते हैं? आपकी हर तरह की हिफाजत करने वाली हस्ती को रकीब कहते हैं। तो फिर कहिए दो चीज़ें, और रकीब तमाम मखलूक की निगरानी करने वाला, तमाम मखलूक की निगरानी करने वाला, एक दो की नहीं तमाम की। आप ज़रा सोचिए, जिनकी वो करेगा तो फिर किसी और की कोई ज़रूरत है? और इसी तरह कोई लम्हे कोई चीज़ इससे गायब नहीं। ये दो लफ्ज़ इनमें बस आज रख लें। एक तरफ आपको सिक्योरिटी का एहसास होगा, है ना मेरे साथ, मैं अकेली क्यों, कभी आपको खौफ आए ना तो कहा करे रकीब मेरे साथ है, अश्शहीद मेरे पास है, मुझे देख रहा है, ठीक है, तो आप सिक्योर फील करेंगे। तन्हाई तन्हाई नहीं, घर में अकेले हैं या किसी भी जगह फंस गए हैं, या किसी जगह आपको किसी पेशी में बुला लिया गया, कोई कोई दफ्तर, कोई कुछ, कोई ऐसी बात, तो आप कहे कि वो मेरे साथ है ना। और दूसरा, आपको जो फिक्र लग जानी चाहिए इस नाम से, यानी एक तो बहुत पॉजिटिव लगा ना, रिलैक्सेशन, सुकून, इत्मीनान, खुशी, लेकिन दूसरा कह के कोई लम्हे कोई चीज़ इससे गायब नहीं, छुप नहीं सकती, दुनिया वालों से तो छुप छुपा के न जाने क्या कुछ कर दें। और फिर एक और चीज़ नोट कीजिए कि रकीब दायमी मुहाफिज और निगरान, दायमी, दायम किसको कहते हैं, ऑलवेज। दुनिया में सिक्योरिटी गार्ड भी रखे तो आवर्स होते हैं, एक आएगा दूसरा चला जाएगा, लेकिन मुस्तकिल कोई एक तो नहीं रह सकता, फिर उसको छुट्टी भी चाहिए, हो सकता है कभी बीमार हो जाए तो ना आए, ये तो इंसानों की बातें हैं। हम जिन छोटे छोटे सहारों पे और कहते हैं जी सिक्योर्ड बाय ब्रिंक्स, ये मैंने आपको पहले भी सुनाया था, घर के बाहर एक जगह लगा रहा बहुत देर पहले, किसी ने जो लिया होगा कोई सर्विस वो ब्रिंक्स देती, तो उन्होंने लिखा सिक्योर्ड बाय या प्रोटेक्टेड बाय ब्रिंक्स, नहीं प्रोटेक्टेड बाय अरकीब, दायमी मुहाफिज और निगरान है वो, महसूस करें उसके लफ्ज को। तो तीन चीजें मजीद लीजिए इस नाम को जज्ब करने के लिए, अभी तारीफें लिखाऊंगी लेकिन अभी सिर्फ जज्ब कीजिए, क्योंकि जब तक आपका मेरा किसी नाम के साथ ताल्लुक नहीं जुड़ता ना, तो हम फिर उसका हक भी अदा नहीं कर पाते, फिर वो हम कागजी बातें और लफ्जी बातें और डेफिनेशन और स्लाइडें और तस्वीरें खींचने में लगे रहते हैं। आप इसको महसूस तो कीजिए, और रकीब सब अगलों और पिछलों का निगहबान, जरा सोचिए, अगले और पिछले, आप, आपके वालिद, आपके दादा, फिर परदादा, फिर उसके आगे, खत्म, हमें तो पता ही नहीं उसको कहते क्या है। चलिए आपका बच्चा, माशाल्लाह बच्चे का बच्चा मौजूद है, पोते, बहुत ही कम लोग होंगे इस वक्त जिनके पोतों के भी बच्चे हों, अब उम्र इतनी लंबी तो नहीं रह गई, फिर उनके बच्चे, जो आपकी अगली चार पीढ़ियां, जो चार नस्लें आनी है, आपको कुछ पता है? और रकीब के हवाले कीजिए, जैसे मरियम की माँ ने कहा था कि इस बच्ची को और इसके बच्चों को भी तेरे हवाले करती हूँ, जब ईसा पैदा हुए उस वक्त तो वो माँ थी ही नहीं, शायद हो भी तो हमें नहीं पता, लेकिन आने और पिछली नस्लों को उसकी सुपुर्दगी में दे दीजिए। फिर दुनिया के तमाम उमूर का मुहाफिज, देखिए आम लफ्ज़ नहीं है ये उमूर, वो तो आपके हम भी हैं जी, हमारे पास भी है एक काम, तमाम उमूर, समंदरों के, खुशकियों के, वीनस के, प्लूटो के, चांद के, सूरज के, सितारों के, मिलियंस गैलेक्सीज के, और सहराओं के, दरियाओं के, पहाड़ों के, पूरी कायनात के हर मामले का मुहाफिज, ओनली मुहाफिज। उसको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, उसके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर अगली बात लिखकर याद कर लीजिए इस लफ्ज को, सीनों के राजों पर भूली बिसरी बातों से वाकिफ। जी, हमारे सीनों में राज होते हैं, दूसरों को नहीं पता चलते। कोई दूसरा राज रख के बैठा होता है, हमें नहीं पता चलता, उसको पता है। दुनिया में कितने लोग हैं इस वक्त? पता नहीं कितने होंगे, बिलियंस ही में होंगे ना, कई बिलियन होंगे। चले हम 10 बिलियन लोगों की मिसाल लेते हैं। आउट ऑफ 10 बिलियन पीपल, कितने लोग ये वादा करते हैं, या ये गुमान करते हैं, या ये दावा करते हैं कि मैं अपने साथ रहने वाले बच्चा जिसको आपने पैदा किया अल्लाह के हुक्म से, माँ के पेट में रहा, आप अपने बच्चे 3, 4, 2, 1 जितने भी हैं दावा कर सकती हैं? आप उसके हर मामले को जानती हैं, उसका हर राज पता है। शौहर, एक छत के नीचे रहने वाली बीवी और शौहर उसकी जगह पे, क्या एक दूसरे के बारे में ये दावा कर सकते हैं कि हमें इनके दिल की हर बात पता है, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कि जिधर गए? आप जो मर्जी CIDs छोड़ दें और आप जितना मर्जी उनको फेसबुक पे ढूंढ लीजिए और आप उनके फोनों के अंदर से डाटा निकाल लीजिए, हर बात आप नहीं जानते, वो सिर्फ और रकीब जानता है। जी, माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ को नहीं पता उसका नसीब कैसा है, और भूली बिसरी बातों से वाकिफ। आपको अपने बचपन की कितनी कु बातें याद है? आखिरी क्या बात याद है, कितनी कु थी आप? और क्या हर याद है? नहीं, आपको अगर 4 साल की उम्र की वाकई को बात याद है, अगर आपकी बड़ी फोटो मेमोरी है और बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने आपको अच्छा मेमोरी लेवल दिया है, तो क्या 4 ईयर्स की आपकी हर बात आपको याद है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल की उम्र के हर हर दिन की हर बात याद है? किस दिन डांट पड़ी थी, किस दिन क्या किया था? नहीं याद, वो उसको पता है जिसको हम अर्रकीब कहते हैं। और फिर देखिए कि अर्रकीब जब आपके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करता है ना, तो फिर आप महसूस करते हैं उसको। तब कह सकते हैं कि अर्रकीब को समझने के लिए ये जुमले, अल्लाह ताला तुम पर निगरान है जो तुम्हारे दिलों और इरादों से बाखबर है। अगर किसी ने रस्मी तौर पर बेदिली से कोई काम कर भी दिया मगर दिल में जज्बे ईसार और खिदमत ना हुआ, तो काबिले कबूल नहीं। इससे अल्लाह ताला से डरने की वजह भी मालूम हो गई कि वो सब पर हमेशा निगरान है। अब ये कौल आपको क्या बताता है? पहली बात, अल्लाह निगरान, हम रिलैक्स्ड हैं, सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, गाड़ियां चलती हैं, कितने हादसे हो सकते हैं, नहीं होते। दिल के इरादों को भी जानता है, दूसरी बात नोट की, आपके इरादे भी जानता है क्या करना है आगे जाके। कोई काम आपका दिल से कर रहा है या बेदिली से कर रहा है उसको ये भी पता है। जज्बा इसार और खिदमत है कि नहीं है, तो आप अल्लाह से इसलिए मोर केयरफुली अपना मामला रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला वो है कि जो इनमें से एक एक चीज को जानता है। इस इमेज को देखिए जरा आप, वीडियो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आजकल ये अमूमन बिल्डिंग्स के बाहर लगी होती हैं, कुछ भी ना हो तो ये साइन लगा देते हैं कि चलो चोरों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाए। क्या आपकी मेरी रिकॉर्डिंग्स हो रही है? दुनिया के कैमरे आप 10 भी लगा लें, घरों के बाहर, बिल्डिंग्स के बाहर, एंगल जिधर है उधर तक है, उससे डिफरेंट पे नहीं आएगा। आप 10 कैमरे लगाएंगे फिर कहीं जाके कवरेज मिलेगी, फिर भी हो सकता है चोर उस खिड़की को तोड़ ले जो उसकी रेंज से बाहर हो, वो आके कैमरों का रुख ही बदल दे। और अक्लमंद चोर जो होते हैं वो आते ही सबसे पहले कैमरों की तारें काटते हैं। तो क्या आपकी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? इन प्रोग्रेस। और वो दुनिया में तो कितने गैजेट ढूंढ डांट के किया, और रकीब वो हस्ती है जो आपके मेरे हर मामले को जानता है। आइए देखते हैं इससे मुतल्लिक सलफ सालेहीन ने क्या कहा कि अर्रकीब किस तरीके से आपके मेरे मामलात से मुत्तले है, यानी अल्लाह सुबहाना ताला के अर्रकीब होने के नाते उसकी निगरानी के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं। सबसे पहली राय अलामा इब्ने हस्सार रहमहुल्लाह की है, कहते हैं कि अर्रकीब वो ज़ात है जो मरकूब, मरकूब कौन है? मफ़ऊल, राकिबा से ही, यानी जिसकी निगेबानी की जाए, यानी हम, जो मरकूब के तमाम अहवाल की रियायत करता है और इसकी तमाम छोटी बड़ी मुसीबतों से हिफाजत करने वाला है और इसके तमाम अहवाल को घेरने वाला है। ऊपर से गुजर जाती हैं बातें, अब सुनिए जरा। अर्रकीब, अल मुराई, मुराई किसको कहते हैं? राई से, रियाया, रियाया का लफ्ज सुना, चरवाहे का नाम सुना, कुल्लुकुम राइयुन, और शायद UAE में एक ब्रांड भी है मुराई, यानी वो कोई डेरी आइटम्स होंगे ना, मुराई उसी से ही है। अर रकीबु अल मुराई अहवाल मरकूब, मरकूब के हालात को जानने वाला, उसकी रियायत करने वाला। अल हाफिजु लहू जुमलतन व तफदीलन, जुमलतन व तफसीलन, अल मुखसी ली जमी अहवालिही, यानी वो ज़ात जो अपने उस बंदे के जिसकी वह निगहबानी करता उसके सारे अहवाल की, उसके सारे हालात की रियायत भी करता, इसकी छोटी बड़ी मुसीबतों से हिफाजत भी करता और इसके सारे अहवाल को घेरे हुए है। सुबहान अल्लाह, कितनी ज़रूरत है हमें अल्लाह ताला के इस नाम की। और फिर शेख सादी का कॉल भी ले लीजिए, कहते हैं कि रकीब वो ज़ात है जो दिलों में छुपे हुए ख्यालात से भी बाखबर है और हर एक के हर अमल की हर वक्त निगरानी करता है, एक लम्हा भी किसी से गाफिल नहीं। खूब समझ लो कि जो कुछ हम खुफिया या एलानिया करते हैं, करते हैं हम कुछ ऐसा, बहुत कुछ करते हैं, पासवर्ड्स लगा के रखते हैं ना, ताले पहले लोग लगाते थे, अब ताले की ज़रूरत ही कोई नहीं, जो कुछ हम छुपा कर या एलानिया करते हैं सब उस सर रकीब जल जलालहू के सामने है। वो हर वक्त साथ है, हर वक्त देख रहा है, वो मखलूक़ात की हिफाजत करता है और अपनी मखलूक़ात के निज़ाम को बेहतर तरीके से और अच्छी तदबीर के साथ चलाता है। यानी हम क्या करेंगे अपने काम जो वो करता है। अब अरबी में सुनिए, अर रकीबो अल मुत्तलिउ अला मा अक़नतहु सुदूरु अल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत अल्लज़ी हफिज़ल मख़लूक़ाति वजरहा अला अक्सनी निज़ामिन वाकमल तदबीर। सुभान अल्लाह। और हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहान तआला के इस नाम को जब आप पढ़ते हैं ना तो इसको अरबी में एक शेर की सूरत में कहते हैं, वहुवर रकीब अलल खवातिरी वलवा हिजी कैफ बिल अफाली बिल अरकान। मतलब क्या इस शेर का, ये इमाम राजी के हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के भेदों और आंखों के इशारों पर भी मुत्तले हैं, तो अल्लाह ताला से हमारे ज़ाहरी उमूर कैसे पोशीदा रह सकते हैं। यानी जो दिल की बातें जानता है फिर वो ज़ाहिर की क्यों ना जानता हो। वो कहते हैं ना कि चोरियाँ आँखों की और सीनों के रास, सबको तू है जानता ए बेनियाज। तो आप अल्लाह ताला की नज़रों में हैं, अपने आप को हर लम्हे देखिए किस तरह कहाँ हैं और कैसे महसूस करते हैं। एक और कॉल अलामा जौहरी रहमहुल्लाह का, अर रकीब के दो मानी देते हैं। क्या कहते हैं, अर रकीब कौन है, यानी इसको अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं कि हिफाजत करने वाला, अर रकीबुल हाफिजु व रकीबुल मुंतज़िर। जी, हिफाजत करने वाला और निगरानी करने वाला, आपका मुंतज़िर है वो। कैसे अल्लाह सुबहान तआला आपके साथ ये सारे मामले फरमाता है और कैसे करता है, इसको महसूस कीजिए। हम उसको भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलता, हम उसकी निगाहों में हैं। सुनिएगा जुमला, अल्लसी हुआ मिनल असरारी करीबुम व इंदल इस्तेरारी मुजीबुन। क्या प्यारा जुमला। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म के एतबार से तमाम राज की बातों से करीब तर है और बेकरारी के वक्त दुआ कबूल करने वाले। कभी लगा वो धड़का दिल को, फिर बताइए ज़रा कौन है उस वक्त जो काम आए। इमाम शाफी का कॉल भी लीजिए, कहते हैं, इज़ा मा खलौत दहरा यौमन फला तकुल खलौत वलाकिन कुल अलैया रकीबन। जब किसी दिन तन्हाई मुयस्सर हो, आजकल तो बड़े लोग तन्हाइयों के मारे हुए हैं बेचारे, ज़िंदगी से कशिश ही ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है कि चीनी ख़त्म हो गई चाय में से, फीकी ज़िंदगियां, न पहनने को दिल, न ओढ़ने को दिल, न कहीं जाने को दिल, न आने को दिल। तो कहते हैं कि जब किसी दिन तन्हाई मुयस्सर हो तो अपने आप को तन्हा न समझना, बल्कि ये ख्याल करना कि मुझ पर कोई निगरान मौजूद है, उसकी निगरानी को महसूस कीजिए। अब जब आप इन सारी चीज़ों को लेते हैं तो फिर सवाल आता है एक दिल में कि रकीब किस किस चीज़ की निगरानी कर रहा है। तो लिखिए, नंबर एक, हर बंदे के आमाल की, फिर उसके ख्यालात से वाकिफ़ है, फिर फरिश्तों की निगरानी कर रहा है, उसने हमें फरिश्तों की भी निगरानी में दिया हुआ है, फिर इंसान के ज़मीर को जिसको नफ्स लवामा कहते हैं, सूरत क़यामत में आता है नफ्स लवामा, उसको भी इंसान के ऊपर एक निगरान बनाया हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि जो कुछ गैर मोमिन के साथ क़यामत के दिन होना है, मोमिन के साथ वो दुनिया में हर लम्हे हो रहा है, क्योंकि वह अपने ज़मीर की अदालत में ख़ुद को खड़ा रखता है मुजरिम बनाकर कि ये किया क्यों और वो क्यों किया। और इसी तरह फिर रकीब इंसानी अज़ा की गवाही लेगा, उसको पता है कि तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। आप देखिए कि अल्लाह जल्ला जलालहू उसको हमारे सब अमाल की खबर है ना, खैर का अमल हो शर का अमल हो, इसके इल्म से बाहर नहीं है, और वो अमाल के बदले बराबर देगा। तो जो जाते पाक खालिक भी हो मालिक भी हो, जिसे हर अमल का इल्म भी हो, जो हमारी खलवतों और जलवतों के तमाम अमाल को जानता हो, क्या इससे डरना ईमान का लाजमी तकाजा नहीं है? तो अल्लाह से डरना है इस लिहाज से, इस खौफ से नहीं कि वो है, महसूस करके देखिए। आप देखिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इंसान शर्मो शर्मी को काम कर देता है, सब नमाज पढ़ रहे हैं तो अब उसको भी पढ़नी है जिसने कभी जुम्मे की भी ना पढ़ी, लेकिन अल्लाह को पता है इसने क्यों पढ़ी। कभी बेदिली से भी उठ के नमाज पढ़ दी, कोई जज्बा नहीं, अच्छा दिल में कुछ नहीं। दुनिया का कोई कानून आपको ना पूरी सजा दे सकता है ना पूरी जजा, वो अल्लाह सुबहाना ताला के जो जहनों और दिलों की तरबियत भी करता है। चलिए एक जुमला लिखिए, सारे निज़ामों पर अर रकीब जल्ला जलालहु निगरान है। इस इमेज को देखिए जरा, आप आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत इमेज है, इसको महसूस करके आप क्या करते हैं, क्या लगता है आपको, क्या कोई चीज़ उसकी निगाहों से खाली है? आप इन सियारों और सितारों का आपस का फासला देखिए, और आप इनके दायरों में घूमना देखिए, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, और इनका तवाज़ुन देखिए, कायनात में पाया जाने वाला तवाज़ुन। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जितने भी ड्रामे फलकी हैं वो मखसूस मदारों में यानी दायरों में घूम रहे हैं। इनके बारे में ज़माने करीब तक तो हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कुरान 1400 साल पहले से ये जुमला सूरत अलम्बिया की आयत 33 में कहता है कि कुल्लुन फी फलकी यसबहून, सारे ये एक फलक में तैर रहे हैं, यानी हर एक अपने आसमान में तैर रहे हैं। तो आप ज़रा इस तस्वीर पर नज़रें जमाइए और चंद बातें सुनिए, और फिर महसूस कीजिए उसकी निगरानी को। आप देखिए सितारे, स्टार्स, सैयारे, सैटेलाइट्स, शुरू से ये नाम सुनते हैं ना, अपने अपने मदारों के गिर्द किन डोरियों में बंधे हुए गर्दिश कर रहे हैं, कौन सी डोरियाँ हैं, क्या ताल्लुक है इनका? इस कदर बड़ी कायनात एक नहायत नाजुक और लतीफ मुनज़्ज़म तरतीब वाले निज़ाम में एक मशीन के गेरों की मानिंद काम नहीं कर रहे? फिर कायनात के मदार देखिए, जो हमारी गैलेक्सीज हैं, कोई चीज़ यानी कायनात के मदार मखसूस अजरामे फलकी की गर्दिशों के पाबंद नहीं है। हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ना, जिसको आप उर्दू में निज़ाम शमसी कहते हैं, और कहकशाएं जिनको आप गैलेक्सीज कहते हैं, इनको दूसरे न्यूक्लियस के गिर्द एक बहुत मेहनत का मुजाहरा करना पड़ता है। ये खड़े होंगे तो सब दुनिया टूट जाएगी, मुस्तकिल सरगर्म है, रवा दवा है जिंदगी, पहम जिंदगी कायनात की। ये चीज इस तस्वीर से देखिए, अगर ये सैयारे और सितारे चंद लम्हे के लिए रुक जाए तो क्यामत आ जाए। हर साल जमीन और निज़ाम शमसी गुज़श्ता बरस के मुकाबले में अपनी जगह से 500 मिलियन 500 मिलियन किलोमीटर दूर हो जाते हैं। यानी 2020 में ये ज़मीन और निज़ाम शमसी और सितारे जितने करीब थे ना, अब दिन ब दिन ये दूर हो रहे हैं, और हर साल 500 मिलियन किलोमीटर। कहाँ से लाएं वो हम फीते, और कहाँ से लाएं हम वो नापने वाले आले? और आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये ड्रामे फलके अपने मदारों से ज़रा भी हट जाए ना, तो ये सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाए। क्यामत ऐसी आनी है आपको, तो जैसे कभी छतरी की तारे अंदर की स्ट्रिंग टूट जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो खुलती नहीं है, टेढ़ी हो जाती है। जिस तरह छतरी को बंद करें और खोलें और बिल्कुल एक फ्लो के साथ चले ना, तो ठीक रहती है। इसी तरह आज ये दुनिया ऐसी चल रही है, जिस दिन अल्लाह चाहेगा ये ख़त्म हो जाएगी, वही क्यामत होगी। मिसाल लीजिए, अगर सिर्फ 3 मिलीमीटर ही ज़मीन अपने मदार से हट जाए, 3 मिलीमीटर कितने होते हैं आपको अंदाज़ा भी होगा ना, माशाल्लाह, मीटर फिर मिली 100th उसका, एक पोर जैसी उंगली की पोर लगती है। अगर ज़मीन 3 मिलीमीटर अपने मदार से हट जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? जी सुनिए चंद फिगर्स। सूरज के गिर्द घूमते हुए ज़मीन एक ऐसे मदार पर गर्दिश करती है कि हर 18 मील के बाद, यानी आफ्टर 18 माइल्स, ये अपने असली रास्ते से 2.8 मिलीमीटर हट जाती है। वो मदार जिस पर ज़मीन गर्दिश करती है वो कभी नहीं बदलता, इसलिए कि 3 मिलीमीटर का रुकना यानी इनहराफ, ये जो आपको था कि 3 मिलीमीटर का एक थोड़ा सा एंगल हटता है, जैसे गाड़ी सीधी चलते हुए थोड़े से उसके पहिए टेढ़े हो ही जाते हैं ना, तो ये 3 मिलीमीटर का अपने मरकज से ज़रा सा इधर को होना तबाह को नतायज पैदा कर देगा। और अगर 2.8 की जगह ये इंक्लाइनेशन 2.5 मिलीमीटर होता तो फिर मदार बहुत बड़ा होता और हम सब बर्फ बन जाते, यख बसता। और अगर थोड़ा सा पॉइंट मिली उधर का, यदि 2.8 की जगह 2.5 होता तो हम जम चुके होते बर्फ की वजह से। और अगर ये 3.1 हो जाए तो हम गर्मी से झुलस कर मर जाते। आप कहेंगे ये आप कहाँ से हमें बताते हैं, ये आप पढ़िए, किताबें मौजूद हैं साइंस की जुबान में, जरा इस कायनात को पढ़िए कुरान की नज़र से, तो कह सकते हैं कि इस बारीकी के साथ कायनात का हुस्न इंतजाम और रकीब ही के लायक है, जो कायनात के जर्रे जर्रे के बारे में पल पल की खबर रखता है। ये सारा निज़ाम उसकी निगरानी में चलता है। आप एक कोर्स के निगरान बन जाइए, देखिए कितनी मुसीबतें हैं। आपको एक इंस्टीट्यूट रन करने को दे दिया जाए, आपको कोई एक क्लास छोटी सी दे दी जाए, कितने हिकअप्स, हमें समझ ही नहीं आती क्या करें। चार लोगों को साथ लेके चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ वो हस्ती बड़ी कितनी है, मैंने तो सब कुछ अल्लाह को दे दिया हुआ है। नाम लेके कहती हूँ अल्लाह ये भी तेरे वाले, ये भी काम, ये प्रोजेक्ट, ये इदारा, ये स्कूल, ये कोर्स, ये फोन, अल्लाह की रहमत से सैकड़ों चीज़ें इर्द गिर्द दिमागों में है। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरे सपुर, तू कर, तेरा जो दिल चाहे तेरे हवाले, और तू करेगा तो अच्छा करेगा, हमसे कोई नहीं अच्छा होना। तो फिर ज़रा महसूस कीजिए रकीब को, फिर बोलिए चंद जुमले। और रकीब की निगरानी क्यों क्यों करता है वो ये सब? इसलिए कि अदलो इंसाफ कायम हो, कोई किसी पे जुल्म ना करते। अगर जुल्म कर दिया तो फिर जुल्म का बदला भी तो वो दिलवाएगा ना, फिर सजा और जजा पूरी पूरी मिले, किसी की हक तलफी ना हो। देखिए ना, इतनी क्लोज मैनेजमेंट में फिर अल्लाह के हुक्म से फिर इख्तलाफात नहीं रहते, किसी की हक तलफी नहीं होती। जहाँ मैनेजमेंट ढीली होगी ना, वहाँ फिर आपस में शिकवे बड़े हो जाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल सीधा रखेंगे ना तो ठीक। जैसे इन मुल्कों में देखिए, वेस्ट में लोग सीधे रहते हैं, वो कर लेते हैं सीधा आपको, और हमारे मुल्कों में देखिए गाड़ी खड़ी करने से लेकर टैक्स देने तक अपनी मर्जियाँ चलती हैं। तो रकीब इतना कीन ऑब्जर्वर है, दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी जिम्मेदारियों में रकीब बना दे। हम सब भी अपने कामों को, जो दिया हुआ अल्लाह ने आपको नेमत काम दी, एक एक चीज़ हम ओवरलुक करते हैं, पता ही नहीं चलता। अब किसी भी जुबान में ये बातें कर लें, कोई नंबर किधर गए, पेपर किधर गए, किसने फीस दी, किसने नहीं दी, किसने अच्छा पढ़ा, कौन बेचारा वक्त पे काम करता है, कौन नहीं करता, एक रौला ही रौला रहता है हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कह लीजिए कि रकीब में रिकॉर्ड कीपिंग है, और अल्लाह ताला सबसे बढ़कर है।